लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि ख्रिस्तीय एवं अन्य सभी धर्मों के अनुयायी तथा समस्त शुभचिंतक लोग विश्व में शांति और न्याय को बढ़ावा दें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। कुछ ऐसे भी भजन हैं जिनमें प्रभु की कृपा, उनके अनुग्रह और अनुकंपा की याचना की गई है। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं को जीवन से दूर रखें। मैं तेरी मुक्ति के लिए तरसता रहता हूँ, मुझे तेरी प्रतिज्ञा का भरोसा है। मेरी आंखें तेरी प्रतिज्ञा की राह देखती हैं। मैं कहता रहता हूँ, तू मुझे कब सांत्वना देगा। मैं धुएं में सिकुड़ी हुई मशक जैसा बन गया हूँ, किंतु मैंने तेरी संहिता नहीं भुलाई। मेरी यह दशा कब तक रहेगी? तू कब मेरे अत्याचारियों का न्याय करेगा? घमंडियों ने तेरी संहिता की उपेक्षा करते हुए मेरे लिए गड्ढा खोदा। श्रोताओं, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 119वें भजन के 81 से लेकर 85 तक के पद। इन्हीं पदों की व्याख्या से विगत सप्ताह हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 119वें भजन के 73 से लेकर 80 तक के पदों में भजनकार ईश्वर को सृष्टिकर्ता स्वीकार कर उनसे सद्बुद्धि की याचना करता है। वह ईश्वर के प्रति महान आस्था, निष्ठा और विश्वास की प्रकाशना करता है। वह ऐसा इसलिए करता है कि हम मनुष्य भी ईश्वर को सृष्टिकर्ता स्वीकार करें तथा उनसे सद्बुद्धि की याचना करें। वह मुक्ति के लिए तरसने की बात करता है इसलिए कि उसका विश्वास अटल है कि मुक्ति केवल ईश्वर में विश्वास कर उनकी आज्ञाओं का पालन कर मिल सकती है। प्रभु की दया दृष्टि की अभिलाषा रखता है, क्योंकि जब तक प्रभु ईश्वर की दया दृष्टि उस पर नहीं होगी तब तक उसकी दशा दयनीय बनी रहेगी। वह प्रार्थना करता है कि ईश्वर घमंडियों को दंडित करें, क्योंकि वे प्रभु की संहिता की उपेक्षा करते और संहिता का पालन करने वालों के लिए गड्ढा खोदते हैं। फिर 86 से लेकर 88 तक के पदों में हम सबसे तथा युग युगांतर तक के मनुष्यों से यही कहना चाहता है कि जब कभी भी संकट हम पर छा जाता है, जब कभी भी हम कठिनाइयों से घिर जाते हैं, तो हम उनसे भयभीत नहीं होवें, बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखते हुए जीवन की हर चुनौती का सामना करें। इसी से हमारा विश्वास सुदृढ़ होगा तथा हम जीवन के पथ पर सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त कर पाएंगे। यह न भूलें कि प्रभु ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ हैं। वे कभी भी अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूलते। वे सत्य की राह पर चलने वाले को सांत्वना और साहस देना नहीं भूलते। ईश्वर की संहिता का पालन करने वालों को, यानी कि ईश्वर के नियम पर चलने वालों को वे नव जीवन प्रदान करते हैं। श्रोताओं, भजनकार इस बात के प्रति भी हमारा ध्यान आकर्षित कराता है कि ईश्वर से प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ईश नियमों पर चलना अनिवार्य है। और ईश्वर के नियम यही सिखाते हैं कि हम ईश्वर की आराधना करें, अपने माता पिता का आदर करें, भाई और पड़ोसी से प्रेम करें। उनसे प्रेम का अर्थ है जरूरत के क्षणों में उनकी मदद करें। यह भी याद रखें कि जिस चीज पर हमारा अधिकार नहीं है उसे हत्याने का हम कदापि प्रयास न करें। इन कुछ एक नियमों का पालन कर हम सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं।
तुम्हारी वाणी है मेरे सम्मुख, जगाए हर सुख,
जगाए हर दुख, जगाए हर सुख।
वचन तुम्हारे सदा ही सत्यम, बनाय संसार सुंदरम।
आगे 119वें भजन की पद संख्या 89 से लेकर 95 में निहित शब्दों में कहता है, प्रभु तेरी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है, वह आकाश की तरह चिर स्थाई है। तेरी सत्य प्रतिज्ञता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। तेरे द्वारा स्थापित पृथ्वी आज तक अचल है। तेरी इच्छा से सब कुछ बना हुआ है, क्योंकि विश्व तेरी आज्ञा मानता है। यदि तेरी संहिता से मुझे अपार आनंद नहीं मिला होता तो मैं अपनी विपत्ति में मर गया होता। मैं तेरी आज्ञाएं कभी नहीं भुलाऊंगा, क्योंकि उनके द्वारा तूने मुझे नव जीवन प्रदान किया है। मैं तेरा ही हूं, मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरे आदेशों का पालन करना चाहता हूं। दुष्ट जन मेरा सर्वनाश चाहते हैं, किंतु मैं तेरी आज्ञाओं का मनन करता हूँ। श्रोताओं, इन पदों में भजनकार हमसे कहता है कि उसकी शिक्षा का अहम भाग संहिता में आश्वासन खोजना रहा है, और इसीलिए आज वह यह कहने में सक्षम है कि प्रभु की प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है, वह आकाश की तरह चिर स्थाई है, वह आदि से अनंत तक विद्यमान है, पीढ़ी दर पीढ़ी वह बनी रहती है। यही कारण है कि सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर द्वारा स्थापित पृथ्वी आज तक अचल है। उन्हीं की इच्छा पर सब कुछ गढ़ा गया, सब कुछ की रचना हुई, और उन्हीं की इच्छा पर सब कुछ निर्भर करता है। उन्हीं की आज्ञा पर संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित है। ऐसे ही सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर द्वारा मिली संहिता का पालन करने से मनुष्य अपार आनंद का पात्र बनता है। ईश्वर का यदि उसे आश्वासन न मिला होता तो वह अपनी कठिनाइयों और अपनी विपत्तियों से कब का हार बैठा होता। उसके जीवन में निराशा ही निराशा होती, जबकि वह आशा में जीना चाहता है, उस आशा में जो केवल ईश आदेशों के पालन से आती है। ईश्वर की आज्ञाओं पर मनन से उसमें आशा का संचार होता है। आगे 119वें भजन के 96 से लेकर 100 तक के पदों में भजनकार कहता है, मैंने देखा कि सब पूर्णताएं ससीम हैं, किंतु तेरी संहिता की कोई सीमा नहीं। प्रभु तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है, मैं प्रतिदिन उसका मनन करता हूँ। इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूँ। मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन किया है, इसलिए मैं वयोवृद्धों से अधिक विवेकशील हूँ। श्रोताओ, पद संख्या 96 में भजनकार स्वीकार करता है कि विश्व की समस्त पूर्णताएं, धरती पर हमारे इस जीवन की सभी पूर्णताएं ससीम हैं, यानी कि कहीं न कहीं उनका अंत हो जाता है, वे समाप्त हो जाया करती हैं। किंतु ईश्वर की संहिता, ईश्वर के शब्द और ईश्वर के वचन की कहीं कोई सीमा नहीं है। तेरा शब्द और तेरा वचन है प्रेम, और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती।
तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु। तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु। तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 23 जनवरी के ट्वीट संदेश में ख्रिस्ते एकता हेतु प्रार्थना सप्ताह में दूसरे ख्रिस्ते समुदायों के विश्वासियों को सुनने की सलाह दी। उन्होंने लिखा, ख्रिस्ते एकता वर्धक सत्कार हेतु दूसरे ख्रिस्तियों को सुनने के लिए इच्छुक होना है। विश्वास पर उनके व्यक्तिगत कहानियों और समुदाय के इतिहास पर ध्यान देना है। ख्रिस्ते एकता वर्धक प्रार्थना सप्ताह 18 से 25 जनवरी तक है। लोक धर्मी परिवार एवं जीवन के लिए गठित परमधम पीठ परिषद के तत्वाधान में बुजुर्गों की प्रेरित देखभाल हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन रोम में 29 से 31 जनवरी तक संपन्न होगा। बुजुर्गों पर ध्यान देने हेतु संत पापा फ्रांसिस के आह्वान का प्रत्युत्तर देते हुए लोक धर्मी परिवार एवं जीवन को प्रोत्साहन देने हेतु गठित परमधम पीठ परिषद ने बुजुर्गों की प्रेरित देखभाल पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। सम्मेलन की विषय वस्तु है जीवन के कई वर्षों की समृद्धि। सम्मेलन में बुजुर्गों को छोड़ देने की संस्कृति का सामना किस तरह किया जाए, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ परिवार में तथा कलीसिया में उनकी विशेष भूमिका पर भी गौर किया जाएगा। वैटिकन न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में सम्मेलन के प्रमुख परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल केविन फरेल ने कहा कि हमारी समकालीन फेंकने की संस्कृति लोगों को दरकिनार करना चाहती है, और इसे कलीसिया में भी देखा जा रहा है कि बुजुर्गों को भुला दिया जाता है। उन्होंने कहा, यदि कोई पल्ली में कार्य करता है, विशेषकर विकसित देशों में, वह जानता है कि बुजुर्ग बहुत ही एकाकी का जीवन जीते हैं, जबकि जीवन के लंबे अनुभव के कारण उन्हें मुख्य व्यक्ति बनना चाहिए। कार्डिनल ने कहा कि बुजुर्गों को नायक बनने का अर्थ है कि कलीसिया उनकी देखभाल करना चाहती है, वह बाहर निकलकर उनके पास पहुंचना चाहती है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य यही है, दुनिया तक पहुंचना और कलीसिया में क्या हो रहा है उसे देखना। उन्होंने कहा कि कलीसिया के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह बुजुर्गों के कई सालों के अनुभवों का फायदा उठाए, खासकर परिवारों में जहां वे बच्चों के पालन पोषण, विकास एवं शिक्षा में सहयोग दे सकते हैं। साथ ही साथ उनकी आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना है। हमें जीवन को बढ़ावा देना है, सभी लोगों के बीच बुजुर्गों की देखभाल की चाह को प्रोत्साहन करना है और बुजुर्गों को नहीं छोड़ना है। उनके पास हमें देने के लिए बहुत कुछ है। कार्डिनल ने कहा कि हमें खोजना है कि इन सभी चीजों को किस तरह बेहतर तरीके से किया जा सके। यही कारण है कि सेमिनार का आयोजन किया गया है। वैटिकन के वित्तीय सूचना प्राधिकरण के अध्यक्ष कार्मेलो बारबाग्लो ने एगमोंट समूह द्वारा रखे गए निलंबन को हटाने की घोषणा की है और कहा है कि अब यह दूसरे देशों के अपने साथियों के साथ सहयोग को फिर से शुरू कर सकता है। बृहस्पतिवार को एक विज्ञप्ति जारी कर वैटिकन के वित्तीय सूचना प्राधिकरण के अध्यक्ष ने घोषणा की कि एगमोंट समूह में अपनी भागीदारी का पिछला निलंबन हटा दिया गया है। उन्होंने कहा, मैं सहर्ष यह घोषित करता हूं कि कल रात एग्मोंट दल के अध्यक्ष श्री मरियानो फेदेरिची ने वित्तीय सूचना प्राधिकरण को अंतर्राष्ट्रीय सूचना सर्किट से निलंबित करने हेतु 13 नवंबर 2019 को किए गए निर्णय को रद्द करने का निर्णय लिया है। बैंगलोर के सेंट फ्रांसिस असीसी कैथलिक गिरजाघर में 20 जनवरी को किसी अज्ञात द्वारा संदूक से पौत्र परम प्रसाद को फर्श पर चित्राकर अपौत्र किया गया। महाधर्मदास पीटर मचाडो ने पौत्र परम प्रसाद को अपौत्र किए जाने के कारण एक दिवसीय प्रायश्चित प्रार्थना का आह्वान किया है। घटना केंजीरी के सेंट फ्रांसिस असीसी कैथलिक गिरजाघर में हुई। पल्ली पुरोहित कपूचिन फादर सतीश कुमार ने स्थानीय पुलिस को शिकायत दर्ज की है तथा घटना की जांच हो रही है। इस दौरान एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बैंगलोर के महाधर्मदास पीटर ने कहा कि बदमाशों ने वेदी को तहस नहस नष्ट एवं क्षतिग्रस्त कर दिया तथा गिरजाघर के सबसे पौत्र स्थल पौत्र संदूक को खोला। परम प्रसाद जो ख्रिस्त का शरीर है उससे उन्होंने जमीन पर चित्राया। यह अपौत्रीकरण का सचमुच बड़ा कृत्य है। उन्होंने कहा, मैं पूरी तरह परेशान हूँ, बुरी तरह हैरान हूँ और बहुत दुखी हूँ कि प्रभु येसु ख्रिस्त के साथ इस तरह का अपौत्र कृत्य किया गया है जो पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित है, जिनको गिरजाघर के पौत्र संदूक में रखा जाता है। महाधर्मदास ने कहा, हमारे प्रभु एवं मुक्तिदाता का अपौत्रीकरण और अपमान एक बड़ी चिंता का विषय है, न केवल संत फ्रांसिस असीसी पल्ली वासियों के लिए बल्कि पूरे धर्म प्रांत एवं पूरे विश्व के कैथलिक समुदाय के सभी लोगों की धार्मिक भावना के लिए। उन्होंने लिखा, अपौत्रीकरण के ऐसे मामलों में सामान्यतः पूरा धर्म प्रांत प्रायश्चित करता तथा गिरजाघरों एवं धर्म सामाजिक आवासों में क्षतिपूर्ति की जाती है। अतः महाधर्मदास मचाडो ने महाधर्म प्रांत के सभी विश्वासियों से अपील की है कि शुक्रवार 24 जनवरी को एक दिन का प्रायश्चित दिवस घोषित करते हुए पौत्र यूखरिस्ते प्रभु को विशेष आराधना एवं प्रशंसा प्रदान करें। उन्होंने उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करने की मांग की है जिन्होंने अपौत्रीकरण के इस बुरे कार्य को अंजाम दिया है। उन्होंने पल्ली पुरोहितों से अनुरोध किया है कि पौत्र साक्रमेंट को सभी गिरजाघरों में एवं धर्म सामाजिक संस्थाओं में 12 घंटों तक विश्वासियों द्वारा आराधना के लिए प्रस्तुत रखा जाए। महाधर्मदास को पुलिस पर पूर्ण भरोसा है कि वह जांच द्वारा इस जघन्य अपराध के अपराधियों को खोज निकालेगी और अज्ञानतापूर्ण कार्य के पीछे के मकसद का पता लगाने का पूरा प्रयास करेगी। उधर आयरलैंड के धर्मदर्श ने ईश्वरचन रविवार के पूर्व एक प्रेरितिक पत्र प्रकाशित किया है जिसमें उन्होंने कई चिंतन एवं परामर्श दिए हैं। प्रेरितिक पत्र का उद्देश्य है इस दिन को बेहतर तरीके से मनाने के लिए विश्वासियों को मदद देना। ईश्वरचन रविवार की स्थापना संत पापा फ्रांसिस ने प्रेरितिक पत्र अपेरुइत इल्लिस को प्रकाशित करते हुए की है जिसको हर साल सामान्य काल के तीसरे रविवार को मनाया जाएगा और इस साल इसे 26 जनवरी को मनाया जाएगा। जैसा कि संत पापा ने कहा है कि इसे ईश्वरचन को पढ़ने और उसका प्रचार करने के लिए मनाया जाएगा। धर्मदास डेरमोन फरेल ने प्रेरितिक पत्र में लिखा है कि पौत्र धर्म ग्रंथ के माध्यम से प्रभु हमारे हृदय में दस्तक देते हैं। उन्होंने संत जेरोम के शब्दों में कहा है कि धर्म ग्रंथ को नहीं जानना ख्रिस्त को नहीं जानना है। उन्होंने कहा, उनकी वाणी आज भी हर तरह से गूंजती है, पुनर्जीवित प्रभु बाइबल के माध्यम से हमें बोलते हैं, वे हमारे मन एवं हृदय पर दस्तक देते हैं। यदि हम उनकी आवाज सुनते और उन पर ध्यान देते हैं तब वे हमारे जीवन में प्रवेश करते और हमारे साथ रह जाते हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।